تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ نہیں. چند باتوں کو سمجھنے کے بعد میں آپ کے سامنے ایک لسٹ بس اب رکھنے والی ہوں 8 قسم کے گواہوں کی. لیکن اس کے لیے چند بیسکس سمجھیے. نمبر 1, اللہ نے انسان کو اس دنیا میں فضول اور بے مقصد یعنی ابس پیدا نہیں کیا, پرپز لیس, بلکہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. میں نے دو جملے بولے ہیں, میں دو قرآن کی آیتیں بول دیتی ہوں. اف حسب تم انما خلقناکم عبسا, کیا بس تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. میں آپ کو پہلے موقع دیتی ہوں کہ یہ کون سی سورت ہے قرآن کی, ہینڈ ریز کیجئے جس کو پتا. یہ ٹکڑا قرآن کی کس آیت کا ہے, نمبر نہیں پوچھ رہی, بس سورت بتا دیں. چلیے پارہ بتا دیں, کوئی نیئر اباؤٹ بتا دیں. سورت مومنہ. اب دیکھیے یہ ہمارے علم کا حال ہے. قد افلح المومنون سے 18 پارہ شروع ہوتا ہے اور آلموسٹ ہاف سے زائد پہ ختم ہوتا ہے, اس کا آخری رکوع ہے. دو سوال ہیں, افا حسب تم, کیا بس تم نے یہ گمان کیا ہے, وٹ ڈو یو تھنک, از اٹ یور پرسیپشن, انکم الینا لا ترجعون کے پہلے کیا, افا حسب تم انما خلقناکم عبس. اردو میں بولتے ہیں عبس, یہ عبس بات ہے, بیکار. کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں, پرپس لیس ہے زندگی. اب یہ آپ پر میں سوال کا جواب دیں گے. اور دوسرا ساتھ ہی سوال ہے, انکم الینا لا ترجعون, جس کو آپ اپنی محاورے کی زبان میں کہتے ہو, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی, 100 دن چور کے 1 دن شاہ کا, آنا تو ہے جو ڈالی ڈالی پھر کے تنے سے گزرو گے. تو پہلی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور دوسری بات ہے جب ہم اس مقصد کو پورا کر چکے ہوں گے یا نہیں, حجت تمام ہو چکی ہوگی ہماری عمر اور ہماری ساری سکلز کی صورت میں, تو اللہ کو جواب تو دینا ہے. اور دوسری بات, عبادت کے لیے پیدا کیا تو سورہ زاریات کی آیت سب کو آتی ہوگی, وما خلقت الجن, بولیے, والانس الا لیعبدون. شاباش, کیا پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور عبادت کا کانسیپٹ بہت بڑا ہے, ہم نماز روزے تک اس کو نہیں رکھ سکتے. اطاعت, بات ماننا بھی عبادت ہے. دن میں ہم کم از کم 17 یعنی 17 ٹائم ایک دعا کرتے ہیں اور ایک اقرار بھی کرتے ہیں. اقرار کیا ہے, ایاک نعبد ایاک نستعین, صرف تیری ہی میں بندگی کرتی ہوں, غلامی, بندگی, عبادت کرتی ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتی ہوں. تو بندگی اور غلامی کیا, اس میں ایک چیز اطاعت ہے. یعنی لفظ عبادت کہتے ہیں نا, وہ فلاں بڑی عبادت گزار ہے, فلاں لڑکا بہت عابد ہے, تو ہمارے ذہن میں عموماً اس کی نماز روزہ اور اس کے ریچولز آتے ہیں. آف کورس یہ تو ہے, لیکن اٹس ناٹ کمپلیٹ پکچر. اگر آپ ایک راؤنڈ کر کے اس کے 3 سیکٹ بنا دیں نا, ایک پورے دائرے کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیں, تو عبادت میں 3 لفظ آتے ہیں. آج لکھ لیں اور پھر خود سے پوچھئے گا کیا میں عبادت گزار ہوں. نمبر 1, وہی جو آپ اور میں شروع سے جانتے ہیں, ریچولس, موڈز آف ورشپ. یعنی عبادت میں ایک چیز آتی ہے, پرستش, اللہ کی بات ماننا, اس کو رب ماننا. اور پھر دوسری کیا آتی ہے, اطاعت, سبمیشن, بات مانو. اور تیسری آتی غلامی. بات ماننے کے بعد بھی اتنے عاجز رہو کہ جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے اکڑنا نہیں ہے. تو اس روشنی میں آپ دیکھیے گا کہ کیا میں عبادت گزار ہوں. تیسری بات لکھ لیں کہ انسان کے اچھے برے ہر عمل کی نگرانی کی جاتی ہے تاکہ انسان محتاط ہو کر زندگی گزارے. سورت قوف قرآن میں کس جگہ ہے؟ یہ بیچ میں میرے جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں نا, آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے, صرف شعور بیدار کرنے کے لیے. ہمارا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میرا لگے اس سے بہت زیادہ سوالات کوئی ہم سے رات کو چلنے والے کسی ڈرامے کے بارے میں پوچھ لے تو ہمیں معلوم ہوں گے, کسی کرکٹر کی لائف ہسٹری کے بارے میں پوچھ لے تو پتا ہوگا, ملکی سیاست کے بارے میں پوچھ لے کوئی تو پتا ہوگا. लेकिन कितनी अजीब बात है, अजनबियत है तो कुरान से, इतने हम इस कुरान से दूर हैं। तर्जमा नहीं आता हमें, नहीं पता सूरत मोमिनून किधर, हमें नहीं पता फासिब तुम किधर, और हमें अब ये भी नहीं पता कि ये बात जो मैंने आखिर में पूछी ये कुरान में किधर। हैरत की बात नहीं, कोई नॉवल, कोई डाइजेस्ट, कोई सस्पेंस सीरीज, सब पता है, सीरियल्स पता है, इंडियन मूवीज पता है, हीरोइनों का अगला पिछला सारा कच्चा चिट्ठा पता है, कुरान नहीं पता। सोचिए कि इसको सूरत कौफ 26वें पारे में 26 उसकी एक आयत, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीत। तुम्हारी जुबान से कोई एक लफ्ज़ भी निकलता है ना तो एक होशियार लिखने वाला उसको फौरन ग्रैब करके राइट कर लेता। यानी आपका मेरा हर अमल रिकॉर्ड हो रहा है। अभी आगे बात आती है, जो लफ्ज़ मैंने अभी तक बोले आप तो नहीं लिख सके होंगे, बीच में किसी ने पॉइंट्स ले लिए होंगे। हाँ, रिकॉर्डर लिख रहा है, आज की राइटिंग ई रिकॉर्ड राइटिंग है। एक एक लफ्ज़ क्या है, मेरी स्नीजिंग, मेरी ब्रीदिंग, एक एक चीज़ लिखी जा रही है। बाद में सुन लीजिए, लाइव सुन लीजिए, जाकर यूट्यूब पे कभी कभी इंसान से टंग स्लिप होती है, वो भी आ जाती है। जब आपको मुझे ये यकीन आ जाता है ना कि मेरी आपकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो क्या हो जाता है, कॉन्शियस। शादी में वीडियो बन रही है और कैमरा मैन का रुख आपकी तरफ हो तो कॉन्शियस होते हैं, और खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि एक सास थी तो अपनी बहू की बुराइयां कर रही थी और मुंह बना बना के एक्शन से दिखा रही थी, कैमरा मैन ने रिकॉर्ड कर ली, फिर घर घर वो वीडियो चली और उस सास की रुसवाई हुई कि अपनी बहू की कैसे बुराइयां कर रही थी। तो कैमरे की आंख आपको देख रही है तो अल्लाह ताला भी आपको देख रहे हैं। किसी को शक पड़ जाए ना मेरी फोन कॉल्स रिकॉर्ड हो रही हैं, कोई इंटेलिजेंस या कोई एजेंसीज मेरे पीछे, मेरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, मेरा ईमेल हैक हो गया, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स चली गई, रंग फक हो जाता है। लेकिन अल्लाह कहता है मा यल्फिज़ु, अब इसमें एक तफसीर का वक्त नहीं है। ये नहीं कहा कि तुम्हारे अल्फाज लिखे जा रहे हैं, नहीं, मा यल्फिज़ु मिन कौल, ये बात है, जो भी तुम्हारे मुंह से निकलता है वो लिखा जा रहा है। बल्कि इन आयात पे एक लेक्चर है, रब की किताब और मेरी किताब, और एक बूढ़ी खातून जो एक इमाम को रास्ते में मिली थी, 8 दिन के सफ़र के दौरान उस खातून की ज़ुबान से कुरान के सिवा और कुछ नहीं उन्होंने सुना। जो बात करते उन्होंने कहा सलाम अलैकुम, कहने लगी सलाम उन कौलम में रब रहीम, कामा किधर से हो, कहने लगी सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही ही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, यानी बैतुल मक़दस से हो। कहा इधर किधर आ गई हो, सहरा में क्या कर रही हो, कहने लगी मैं युद्लिल्लाहु फला हादी अला, जिसे अल्लाह गुमराह कर दे भटका दे तो उसको कौन राह दिखाए। समझ गए कि ये काफिले से बिछड़ी हुई है, अपनी सवारी लाकर उसके करीब बिठाई, का अम्मा बैठो, कहने लगी सुबहान अल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अब तो वो परेशान, सफ़र करते करते बिल आखिर उस काफ़िले तक पहुंच गए जहां उसके बेटे भी थे, और उस काफ़िले से ये अम्मा जुदा हुई थी। कहने लगे अम्मा अब बताओ कौन है इधर, किसको बुलाना है। अम्मा ने कुरान की वायत पढ़ी जिसमें मूसा, यूसुफ़ और इब्राहिम का नाम था, और काफ़िले से 3 चौड़े चकले नौजवान आए जो उसके बेटे थे। बेटों ने देखा, सलाम किया, कहने लगे जाओ तुम में से सूरह कहफ़ की आयत पढ़ती है, किसी को भेजो तामन अज़का, पाक खाना लेकर आए। अब तो वो रह ना सके, उन्होंने कहा ये बताओ कि 8 दिन से इस औरत के मुंह से मैंने सिर्फ कुरान सुना है, जो बात मैं करता हूँ इसका जवाब कुरान से देती है, तो बच्चों की गवाही थी कि आप 8 दिन की बात करते हैं, हमने पिछले 40 साल में अपनी माँ की जुबान से कुरान के सिवा कुछ नहीं सुना है आज आपको, मुझे इसका दावा? क्योंकि अम्मा को ये पता था कि माँ यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन नतीन, शी वॉज एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कॉन्शियस। तो आपके मेरे अच्छे बुरे आमाल नोट हो रहे हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, हम सबको चाहिए अपने हर अमल में मुहतात हों, वी नीड टू बी केयरफुल। जहाँ इसको यकीन हो कि इसके अमल की निगरानी हो रही है, कैमरे की आंख इंसान को अगर खबरदार रख सकती है, तो असमी और अल बसीर का देखना और अल अलीम का जानना उसको केयरफुल क्यों नहीं कर सकता? आप देखिए कि इंसान की फितरत में एक बात है, आज बल्कि छुट्टी वाले दिन नोट कीजिएगा, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह हेल्पर्स मौजूद है ना, मासियां काम करती हैं, सफाई करने वाली औरत के सर पे खड़े हो जाएं तो फिर जैसा पोछा फिरता है, और अकेले में जो फिरती हैं वो क्या होता है? सवाल पैदा होता है कि आप उसको कह भी कुछ नहीं इतना सकते, लेकिन ना आपके सर पे खड़े होने और ना होने से फर्क पड़ता? तो अल अलीम अल बसीर असमी के देखने और उसके भेजे हुए फरिश्तों के नोट करने के साथ क्या फीलिंग नहीं आएंगी? यकीन कीजिए छोटा बच्चा भी माँ बाप की मौजूदगी में कॉन्शियस होता है, चुकन्ना होता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स देख रहे हैं। तो अल्लाह की ज़ात तो बहुत बड़ी है ना। लफ्ज़ गवाही आज का थीम नुक्ता यही है, और गवाही का खौफ इंसान को बहुत सारे गलत कामों से रोक देता है। अदालत की गवाही को जहन में लाइए, अल्लाह ना करे कभी कोई अदालतों में जाए और वो भी हमारे मुल्क की, इज्जत वाले भी जलील हो जाते हैं। जैसे मलका सबा ने कहा था ना कि बादशाह जो है वो इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, जब इन्नल मलूका, तो अल्लाह ना करे कोई ऐसे मुकदमों में फंसे। इसी तरह से क्यामत के दिन अल्लाह की तरफ से कुछ गवाह होंगे, और गवाही का खौफ इंसान को गलत कामों से रोक देता है। हम दिलेरी से गुनाह करते हैं और भूल जाते हैं क्या कि हमारे ऊपर कुछ गवाह मौजूद हैं, हमें इसका एहसास ही नहीं है। क्या मुस्तकिल सेंसिटिव कैमरों की जद में है, हसास तरीन, और हमारा एक एक अमल रिकॉर्ड हो रहा है। आपको पता है कि बाहर की दुनिया में अब ऐसे कैमरे फिक्स हो चुके हैं, आप सामने हैं ना तो कैमरा तो तस्वीर लेता ही है ना, वो तस्वीर जिसकी इस वक्त आपको इजाज़त नहीं है, कैमरा खोलेंगे तो ले सकते हैं ना। ऐसे कैमरे हैं कि आप अपनी जगह से चले गए, 3 सेकंड 5 सेकंड इवन 10 सेकंड बाद तक भी अगर उस जगह की कोई तस्वीर खींचे ना तो आपका इमेज उसमें आ जाता है। साइंस ने आज ये प्रूव कर दिया कि बंदा जब किसी जगह से जाता है ना तो उसका उस जगह पे फ्यू सेकंड उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये एक अलग मौजू है जो आज नहीं छेड़ सकती, आगे थोड़ा बहुत आ भी जाएगा कि माँ कदम हूँ वह सारा हूँ। सूरत यासीन की आयत 12 में आप पढ़ते हैं, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुमने क्या आगे छोड़ा क्या पीछे छोड़ा, ठीक है। तो लिहाजा हमें इस शऊर के साथ जीना है कि हमारा एक एक अमल रिकॉर्ड हो रहा है और हमारे ऊपर कुछ गवाह हैं। अब वो कौन से गवाह हैं, मैं सिर्फ गोथ्रू कराऊंगी, पर ना इस पर पूरा शॉर्ट कोर्स करना चाहिए, 8 दिन का एक कोर्स, 8 गवाह। तो आइए ज़रा सा जानते हैं कि ये गवाह कौन है। मैं 3 सेकंड बिल्कुल खामोश रहूँगी, आप अपने इंटेलेक्ट को यूज़ कीजिए, अपनी सोच में रखिए भला कौन होंगे, एज्यूम तो कीजिए, आपके हाथ ठंडे हो जाएंगे, खौफ आएगा आपको, सोच लिया आपने? चलिए लिखिए, पहला गवाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले गवाह हैं। आप सब सोचिए कि अल्लाह सुभान व तआला आपके मेरे अच्छे और बुरे कामों पे गवाह हैं। अच्छे कामों का सुन के तो खुशी होगी ना, बुरे काम का सोच के हाथ ठंडे होते हैं। क्यामत के दिन हमारे गुनाहों पे, मैं आज गुनाह के लफ्ज़ को फोकस करूँगी क्योंकि ये अनाउंस यही था, ताकि इसका कुछ तो इम्पैक्ट रहे हमारे ऊपर। सबसे पहले गवाह अल्लाह सुबहाना ताला होंगे, और अल्लाह सुबहाना ताला इस बात को कहाँ करते हैं, आप सिर्फ आयतों के नंबर नोट करें, बाद में जाकर कुरान पाक में से ढूंढकर उन आयतों को देखें भी और उस पर गौर व फिक्र करेंगे। सूरत निसा की आयत नंबर 33 है, इन अल्लाह काना अला कुल्ली शयिन शहीदा, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर गवाह है। अब हर चीज़ में अच्छी भी होगी तो बुरी भी होगी। फिर उसके बाद एक और आयत नोट कीजिए, सूरत हदीद की आयत नंबर 4, सिर्फ नंबर्स नोट करेंगे आप, वहुवा माकुम अयनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, यानी वो तुम्हारे साथ हैं तुम जहां भी हो, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल को देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट नोट कीजिए, सूरत यूनुस की आयत नंबर 61, वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा, ए लोगो तुम जो काम भी करते हो तो जिस वक्त तुम इस काम में मशगूल होते हो हम तुम्हें देखते रहते हैं, और तुम्हारे रब से कोई जर्रा बराबर चीज भी पोशीदा नहीं है, ना जमीन में और ना आसमान में, ना इससे छोटी ना बड़ी, मगर एक वाज़ेह किताब में मौजूद है। महसूस करें, वला तामलून मिन अमलिन इल्ला कुन्ना अलैकुम शुहूदा इस तुफीदू नफी वमा याजुबू अर रब्बिका मिन मिसकाली जर्रतिन फिल अर्दी वला फिस्समाई वला असगर मिन जालिक वला अकबरा इल्ला फी किताब मुबीन। क्या इन सारी बातों को सुनते वक्त कुछ नहीं हो रहा जहन में, कुछ नहीं मसला हो रहा? आपके मेरे काम, जब हम गुनाह के किसी काम में मशगूल होते हैं, आज से अपने लिए एक्टिविटी लीजिए, इतना तो शऊर है ना कि गुनाह के ऐसे आपके, ये अलग बात है कि अब मत मारी जा रही है लोगों की कि गुनाह को गुनाह ही ना को। आज के दौर का ये भी एक बहुत बड़ा फितना है, कोरोना इतना बड़ा फितना नहीं था जितना ये है कि गुनाह को गुनाह भी नहीं माना। पहले लोग गुनाह करके डरते थे, कहते थे गुनाह किया, अब कहते हैं ये गुनाह थोड़ी है, ये जायज़ है। क्या म्यूज़िक हराम है? क्या डेटिंग गुनाह है? मुझे तो शादी करनी है उस लड़के के साथ, तो फिर उससे मिलना क्या बुरी बात है? आई एम सीरियस, वी लव ईच अदर। देखो ज़रा जुबान कैसी चलती है। एक और मुकाम लिखिए, सूरत कसस की आयत नंबर 78, वला युसलु अन ज़ुनूबिहिमुल मुजरिमून, मुजरिमों से इनके गुनाहों के मुतल्लिक पूछा नहीं जाएगा। लोग कहते हैं देखो देखो कुछ नहीं पूछना, क्यों? इसलिए कि अल्लाह को तो खुद पता है। जब अल्लाह को खुद से पता है तो वो किसी से क्यों पूछे? तो आइए जरा अपने आप को इस गवाह के सामने खड़े करने के लिए तैयार हो। वो दिन क्या होगा तसव्वुर में लाइए, अपना कोई गुनाह सोचें इस वक्त भी। उर्दू में एक जुमला बोलते हैं, मुहावरा, रंगे हाथों पकड़ा जाना। कोई मासी चोरी कर रही थी और ऊपर से मालकन आ गई, बेटी किसी से बात कर रही थी नाजायज किस्म की तो माँ ने सुन लिया, और सो ऑन। आप खुद सोचिए, मैं क्यों बोलूँ, क्या होगा? हाथ ठंडे। शौहर साहब किसी लड़की से चैटिंग कर रहे थे और बीवी ने एकदम उनकी चैट पकड़ ली, पासवर्ड खुल गया, फोन खुला रह गया, है ना मसले? उस दिन क्या होगा सोचिए ना, आप सोचें, अब बोलना नहीं है, बस सोचना है हमने। क्या आलम होगा, क्या जवाब देंगे अल्लाह को उस दिन? तो आज से इस पे काम कीजिए। और आप पता है इसका नाम क्या है? तकवा। तकवा क्या है? कि अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह इज वॉचिंग मी, हिफ्ज़ुन नफ्सिन अम्मा युसिन, अपने नफ्स को हर उस चीज़ से बचाना जो इंसान को गुनाहगार करते। इसको जज्ब करने में आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह हम बाद में गौर करेंगे। मैं आपको दूसरे गवाह पे ले चलती हूँ, सेकंड गवाह। आप सोचिए कौन होंगे, तसव्वुर में लाइए, इंसान के अपने जिस्म के आज़ा, बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन, लिम्स, और अमूमन ये वो होते हैं जिनको इंसान पालता है, पोसता है, खिलाता है, पिलाता है। एक मेरे पास अलग भी टॉपिक है अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं डिलीवर किया था इंसानी आज़ा की अदालत में, उसमें पूरी बल्कि बुक का याद कराई, उसको भी कहीं मैं थोड़ा सा करवा दूंगी। पूरी बॉडी पार्ट कुरान की वो आयतें जिसमें हाथों का, आंखों का, कानों का और इस तरह की चीज़ों का सवाल है। तो इंसान के आज़ा क्या हैं, अल्लाह ताला आपको मुझे इसका मौका देते हैं, और हम सबको ये याद कर लेना चाहिए कि जिन आज़ा की लज्जत के लिए इंसान गुनाह करता है और अपने रब को नाराज़ करता है, कल रोज़ मक्षर यही अज़ा उस इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। इंसान के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, सील्ड, ज़िप द माउथ, और इसके हाथ और पांव गवाही देंगे। अब इसकी आयतें नोट कीजिए, मैं सिर्फ आयतें दूंगी, ज़्यादा डिटेल नहीं दूंगी। सबसे पहले सूरत यासीन की आयत नंबर 65। अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, और आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे। वतुकल्लिमुना अयदीहिम, और कलाम करेंगे हमसे इनके हाथ, यानी हाथों को ज़ुबान मिल जाएगी। वतशहदु अरजुलुहुम बिमा कानु यक्सिबून, और इनके पांव गवाही देंगे कि वो क्या कमाई किया करते थे। सोचिए ज़रा, यानी इंसान के मुंह को बंद कर दिया जाएगा, और ये बड़ी प्यारी इसकी हदीस है, सुन लीजिए, शायद हम आज इसको सुनकर डर जाए। ये रिवायत बड़ी तवील है, सही मुस्लिम में 7439 नंबर की, और कुछ एडिशन में 2969 भी है, लेकिन हदीस मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, कहते हैं कि एक दिन हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि आप यकायक हंसने लगे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बॉडी लैंग्वेज भी यूज़ करते थे। फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो मैं क्यों हंस रहा हूँ? हज़रत अनस कहते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया कि मैं क़्यामत के दिन बंदे और अल्लाह के दरमियान मुँह दर मुँह, यानी फेस टू फेस, आमने सामने गुफ्तगू होने का ख्याल करके हंस रहा हूँ। उस दिन बंदा कहेगा, आप सब तसव्वुर में लाइए कि बंदा खड़ा है और रब है। उस दिन बंदा कहेगा, ऐ परवरदिगार, क्या तूने मुझको जुल्म से पनाह नहीं दी है? यानी क्या तूने नहीं फरमाया कि मैं अपने बंदों पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं करता? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये बात सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ तुझको मैंने पनाह दी है, और मैं यकीनन बंदों पर जुल्म नहीं करता। यानी बंदा अपनी सफाई पेश कर रहा है कि अल्लाह आज मुझ पर जुल्म ना करना। तब बंदा कहेगा, अगर तूने मुझको जुल्म से पनाह दी है तो मैं अपने मुतल्लिक इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता कि मेरे बारे में गवाही देने वाला मुझ में से ही हो। आप उस नैरियो समझ आ रहे हैं? क्यामत के दिन गवाहियाँ आएंगी ना, तो अल्लाह ताला कहेगा कि बंदे की गवाही दो, तो बंदा कहेगा, अल्लाह ताला मुझे किसी बाहर के बंदे की गवाही नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो मेरे पे झूठ बोल दे, मुझ पे जुल्म करे, तो किसकी? कहेगा, मेरे अपने बॉडी, मेरे जिस्म की गवाही लीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदे की ये बात सुनकर अल्लाह ताला फरमाएगा, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, यानी ठीक है, इट्स ओके, ब्रिंग योर ओन विटनेसेस। आज तुम अपने खिलाफ बतौर गवाह खुद काफ़ी हो, और किरामन कातबीन भी गवाह हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर बंदे के मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, यानी इसके बोलने की कुव्वत को ख़त्म कर दिया जाएगा, और इसके बाद इसके तमाम अज़ा और जिस्म को हुक्म दिया जाएगा कि बोलो। चुनाचे इसके जिस्म के अज़ा इसके इन अमाल को बयान करेंगे जो इसने इन अज़ा के ज़रिए किए थे। फिर इस बंदे और इसके बोलने के दरमियान से पर्दा उठा दिया जाएगा, यानी इसके मुंह पर जो मोहर लगाई थी इसको तोड़ दिया जाएगा, और इसकी कुव्वत गोयाई, यानी बोलने की ताकत, स्पीकिंग पावर बहाल कर दी जाएगी, यानी वो दोबारा बोलने के काबिल हो जाएगा, जिससे वो पहले की तरह बातें करने लगेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये सूरत हाल देखकर अब आप अपने जिन में लाइए, यानी आपका अपना जिस्म आपके खिलाफ बोल रहा है। आंखें भी अल्लाह ने ये देखा था, कान भी ये किया था, वो किया था, ये और वो बातें करेगा तो इंसान क्या कहेगा, दूर हो बदबख्तों और हलाक हो, मैं तो तुम्हारी ही तरफ से और तुम्हारी ही निजात के लिए लड़ झगड़ रहा था। अल्लाह अकबर, किस किस को समझ आ गई ये बात, खौफ नहीं और अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कानों से, अपने पाँव से, है ना। आप देखिए कि जिस जिस्म को हम बचाने की खातिर वहां लड़ रहे हैं कि बाहर का कोई ना आए, मेरा जिस्म गवाही देगा, वो जिस्म ही उसके बारे खिलाफ बोलेगा। अब सवाल ये कि कौन बोलेगा, तो लिखिए सबसे पहले हमारी रॉन, ये थाइस, और इसकी हिकमत भी समझिए। अल्लाह हमें सेक्सुअल गुनाहों से बचाए। हदीस मुस्तद अहमद में 13160 में उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़यामत के दिन जब इंसानों के मुंहों पर मोहर लगा दी जाएगी तो सबसे पहले इंसान की बाईं रान यानी लेफ्ट थाई की हड्डी बोलकर इंसान के आमाल को बयान करके इसके खिलाफ गवाही देगी। जी, आपका अपना जिस्म और जिस्म में सबसे पहले आपकी थाइस ये गवाही देंगी। और इसी तरह से बुरे कामों के साथ साथ अच्छे कामों की गवाही कैसे मिलेगी, एक और रिवायत नोट करें। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है 1501, हजरत यसीरा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि वो तकबीर, तकदीस और तहलील का एहतमाम करें। किसको पता है ये तीन लफ्ज क्या होते हैं, तकबीर क्या है, बोल दें, बल्कि अल्लाह अकबर बोलें, अल्लाह अकबर, फिर बोलिए, चलिए तकदीस क्या है, सुभान अल्लाह, सब बोलें, फिर बोलिए, चलिए तहलील क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोले, पता है मैंने आपसे क्यों बुलवाया, ताकि ये जगह, ये कुर्सियां, ये हॉल कल आपके हक में गवाही दे। फरमाया कि इसका इहतमाम करें और इस बात का कि वो उंगलियों के पोरों से गिना करें, यानी ये उंगलियां, ये जो थे ना नोक, इससे पढ़ा करें, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर, इस तरह। क्यामत के रोज सवाल किया जाएगा और वो बोलेंगी। क्या पता चला इस हदीस से कि क्यामत के दिन हमारे हाथों की उंगलियों पे अगर हमने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा तो इंशाल्लाह ये हमारी पोरें यानी जो हमारे टिप्स हैं उंगलियों के, ये गवाही देंगे कि इन्होंने ये कलेमात पढ़े थे। तो जब भी कुछ पढ़े ना तो कोशिश करें कि उंगलियों पर पढ़िए इसको।